जैसे ही छवि सिंघानिया ने माहिरा को आरव की किसी और लड़की के साथ क्लोज होने की पिक्चर्स भेजी, वो तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। लगभग एक घंटे बाद माहिरा हॉस्पिटल पहुंची। आरव और कबीर तब तक हॉस्पिटल में ही थे। वहां पहुंचते ही माहिरा ने आरव को कॉल किया ताकि उसे जान सके कि वो उस वक्त कहाँ है। मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ और मुझे दादी से पता चला कि तुम भी यहाँ पर हो। चलो बताओ कहाँ हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, माहिरा ने आरव के कॉल पिक करते ही कहा। आरव उस वक्त मिस्टर कपूर के साथ मीटिंग में था। उसने जवाब में कहा, ओके देन, हॉस्पिटल के सीईओ के रूम केबिन में आ जाओ, मैं उनके साथ मीटिंग में हूँ। अपनी बात कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट हो जाने के बाद माहिरा हैरानी से मोबाइल स्क्रीन को देख रही थी। उसने उसी लहजे में कहा, कहीं छवि सिंघानिया की बातों में आकर मैंने गलती तो नहीं कर दी? आरव के लहजे से साफ है कि वो सच में किसी मीटिंग में है और इसी के लिए आया होगा। खैर, इसका भी पता चल जाएगा, लेकिन मुझे बहकाने की सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी छवि सिंघानिया। माहिरा को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसका दुबई जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन छवि की बातों में आने की वजह से वो एयरपोर्ट के बजाय हॉस्पिटल में थी। माहिरा ने अपने कदम मिस्टर कपूर के केबिन की तरफ बढ़ाए। वो अंदर गई तब उनकी मीटिंग चल रही थी। मिस्टर कपूर से उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए आरव ने कहा, शी इज़ माई बिजनेस पार्टनर माहिरा लूथरा। आरव माहिरा को अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करवाता था। उसके बाद माहिरा और मिस्टर कपूर ने हैंडशेक किया। माही, जैसा कि तुम्हें पता है, हमने सुबह जो डील साइन की थी, मैं उस लैंड पर हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ। वहाँ इंटरनेशनल मेडिकल फैसिलिटी होगी और साथ ही यहाँ के डॉक्टर्स भी। बस इसी के चलते मैं मिस्टर कपूर से मिलने आया था, आरव ने उसे अपनी मीटिंग करने की वजह बताई। पूरी बात जानने के बाद माहिरा ने राहत की सांस ली, पर साथ ही अंदर उसे छवि पर गुस्सा भी आ रहा था। माहिरा ने उसके बात पर हामी भरी और कहा, ऑफ कोर्स, इलाज भी कम कॉस्ट में करने की कोशिश करेंगे, गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री होगा ट्रीटमेंट। माहिरा उसके इस डिसीजन से खुश थी। वहीं माहिरा की बात सुनकर कबीर ने बड़बड़ाकर कहा, सीरियसली, ये यहाँ भी अपना फ़ायदा ही देख रही है, हॉस्पिटल की आड़ में इन्हें अपना ब्लैक मनी वाइट करना है। वो सब बातें बाद में डिसाइड होती रहेगी, बाकी मैंने मिस्टर कपूर से बात कर ली है, आगे का प्रोसेस ये आज से ही शुरू कर देंगे, आरव ने माहिरा की बात को बदलते हुए कहा। वो भी समझ गया था कि माहिरा क्या चाहती है। मिस्टर कपूर से मीटिंग करने के बाद माहिरा आरव के साथ बाहर आई। उस समय कबीर उनके साथ नहीं था, वो पार्किंग एरिया में आरव का इंतज़ार कर रहा था। बाहर आते ही आरव ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें टाइम स्पेंड करने के लिए कहाँ जाना है? किसी रेस्टोरेंट चलें या फिर रात को पार्टी प्लान करें? फ़िलहाल तो कहीं नहीं, अभी अभी डैड का मैसेज आया है और मुझे दुबई जाना होगा, वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से यहाँ हूँ। जैसे ही माहिरा ने दुबई जाने की बात कही, आरव के फेस पर चमक आ गई। आरव के फेस पर एक हल्की स्माइल थी जिसे माहिरा से छुपाने के लिए उसने जल्दी से उसे हग कर लिया। आई विल मिस यू सो मच बेबी, मुझे लगा कि तुम थोड़े दिन और यहाँ रुकोगी, आरव ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन अपने काम को भी ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकती, माहिरा आरव से अलग होकर बोली। वहाँ कुछ देर हल्की फुल्की बातचीत के बाद माहिरा ने आरव को गुड बाय कहा और दुबई जाने के लिए निकल गई। वहीं उसके जाने के बाद आरव कबीर के साथ अपनी गाड़ी में था। थैंक गॉड मुसीबत टली, शी इज सो इरिटेटिंग, आरव ने खुश होकर कहा। इरिटेटिंग एंड अपॉर्चुनिस्ट टू, कबीर ने आइज रोल करके कहा। आपने देखा ना कैसे हॉस्पिटल के बहाने मैडम को अपने ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करना था। हाँ जानता हूँ, बट यू डोंट वरी, मेरे होते ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पास खुद की मेहनत से कमाए हुए इतने पैसे हैं कि वैसे एक तो क्या, उसके लिए 10 हॉस्पिटल भी खड़े कर सकता हूँ, आरव ने फ्लो फ्लो में आयो की तरफ इशारा किया। उसकी बात को पकड़ते हुए कबीर जल्दी से बोला, क्या कहा आपने अभी, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, चुपचाप गाड़ी ड्राइव करो, आरव ब्लश कर रहा था इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कबीर ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वो दोनों वहां से खुराना इंडस्ट्रीज जा रहे थे। दिन का शिफ्ट पूरा करने के बाद आयो आयान के साथ उसके केबिन में थी। रात को दोनों ने साथ पार्टी करने का डिसाइड किया था। आयान ने आयो से पूछा, बताओ कहाँ चलना है? ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे शहर के सबसे बड़े क्लब में जाना है, आयो ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आयान ने मुंह बनाकर कहा, तुझे जाने के लिए और जगह मिली क्या? जबकि अच्छे से जानती हो उस जगह की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, किसी और नाइट क्लब में चलते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देखो तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, हम दोनों स्टारलाइट नाइट क्लब ही चलेंगे, आयु बच्चों की तरह जिद करने लगी। अयान ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन आयु ने जिद पकड़ ली थी, मजबूरन अयान को हाँ कहनी ही पड़ी। ठीक है, सिर्फ तेरी खुशी के लिए हम वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन एक घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे, उसके बाद हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, अयान ने हामी भरते हुए कहा।
वो तो मुझ पर डिपेंड करता है कि कहाँ कितनी देर रुकना है, बोलते हुए आयु ने आई विंक की। फिर उसके बाद उसने कहा, मैं घर जा रही हूँ, चुपचाप लेने आ जाना। और कोई ऑप्शन है क्या, अयान ने सिर हिलाकर कहा। अयान को बाय बोलकर आयु वहां से चली गई। वो अपने घर गई थी ताकि तैयार हो सके। रात के लगभग 9 बजे के करीब अयान आयु को लेने आया। अयान ने व्हाइट पैंट्स के साथ व्हाइट टी शर्ट पहनी थी और उसे ब्लैक लॉन्ग शर्ट के साथ ट्यून किया था। वहीं आयु ने व्हाइट कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहना था जिसके स्लीव्स की तरह पतली स्ट्रिप्स थी। आगे से नेक लो होने के कारण उसका थोड़ा क्लीवरेज भी दिख रहा था। आयु ने अपने बाल स्ट्रेट करके पूरे खुले छोड़ रखे थे। जैसे ही अयान ने आयु को देखा, उसने मुंह बनाकर कहा, इससे बाहिया ड्रेस नहीं मिली थी तुम्हें पहनने के लिए? क्या फर्क पड़ता है, मैं कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लूं, करनी तो तुम्हें बुराई ही है, आयु ने सार्केस्टिक वे में सिर हिलाकर जवाब दिया। कुछ ही देर में दोनों वहां से मुंबई के सबसे बड़े नाइट क्लब स्टारलाइट में पहुंच चुके थे, एक ऐसी जगह जो अपनी वीआईपी पार्टी के साथ साथ इलीगल मीटिंग्स के लिए भी बदनाम थी। वहां पहुंचते ही अयान ने पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की। वो आयु के साथ अंदर जा रहा था तभी उनके पीछे एक और गाड़ी रुकी। उसमें से आरव और कबीर निकले, वो भी वहां किसी मीटिंग के लिए आए थे। चलिए आरव और आयु की एक और मीटिंग होगी और आरव की आयु को अलग कपड़ों में देखने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बाकी की चीजें अगले पार्ट में। अपनी दूसरी कहानी का प्रोमो डाल रही हूँ, कल तक लाइव हो जाएगी तो प्लीज जाकर जरूर पढ़िएगा। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। चंडीगढ़ शहर के आउटसाइड एरिया में एक बड़ा सा मेला था। वहां काफी भीड़ थी और लोग अपने एंजॉयमेंट में बिजी थे। भीड़ में से एक लड़की जोर से चिल्लाकर बोली, ओए अर्जुन, वो देख पानीपुरी, आई वॉन्ट देम, बोलते हुए वो पानीपुरी के ठेले की तरफ जाने लगी। फिर वो अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुड़ी। कम अर्जुन, वो मुस्कुराकर बोली जिससे उसके गालों पर हल्के डिंपल उभरे। उसने ब्लैक जीन्स पर पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहन रखा था। दौड़ते हुए उसके कमर से कुछ ही छोटे घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो लगभग 5 फीट 4 इंच लंबी थी। गोरा रंग, छोटी आंखें और मासूम सा चेहरा। वो आंशी थी।
आंशी वहां पर घूमते हुए सामान खरीद रही थी तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो वही छोटे कद वाला आदमी था जिसने अपना मुंह ब्लैक कलर के कपड़े से कवर कर रखा था। उसके पास एक बड़ा सा काला बैग था। आंशी ने नोटिस किया वो आदमी हर एक दुकान पर जाकर थोड़ा बहुत सामान बिखेर कर बिना कुछ लिए वापस जा रहा था। उसे देखकर आंशी बड़बड़ाकर बोली, चंडीगढ़ के मुंडे भी काफी तेज हो रहे हैं, उसे तो देखो कब से सामान इधर उधर बिखेर कर विंडो शॉपिंग कर रहा है। कोई लड़की होती तो फिर भी देखती, लेकिन लड़के भी ऐसा करते हैं, आज पता चला। आंशी का ध्यान उस आदमी पर अटक गया। वो उसे नोटिस करने लगी और काफी देर तक करती रही। कुछ देर तक तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे रहा नहीं गया। वो दौड़कर उस आदमी के पास गई। एक बात बताइए भाई साहब, आखिर आप खरीदना क्या चाहते हैं, आंशी उससे बोली, और ये शाम के टाइम आप अपना फेस कवर करके क्यों घूम रहे हो? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। आंशी उस पर चिल्लाकर बोली, क्या कहीं तुम चोर तो नहीं जो सब दुकानों पर थोड़ी थोड़ी देर तक रुककर उनका सामान चुला रहे हो? तुम्हें उससे मतलब? उसने आंशी को घूर कर देखा और जवाब दिया, अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब तुमसे तो यहाँ के लोग ही निपटेंगे, आंशी ने उससे कहा और फिर जोर जोर से शोर मचाने लगी। अरे भाइयों बहनों अंकल आंटियों जल्दी से आओ, देखो ये आदमी चोरी करके भाग रहा है। उसकी आवाज ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग उस तरफ बढ़ने लगे। आंशी ने उसके मुंह का कपड़ा खींच लिया। उस आदमी ने जल्दी से आंशी को धक्का दिया और वहां से भागने लगा। भाग दौड़ में उसका बैग नीचे गिर गया। आंशी ने बैग की तरफ देखा। वो उसके पास गई और उसे खोला। बैग खोलते ही वो जोर से चिल्लाई, बॉम्ब, ये एक बॉम्ब है, ये आदमी सब जगह बॉम्ब प्लांट कर रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सबको सुनाई दी और कुछ ही देर में वहां पर अफरा तफरी मच गई। सब लोग बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाते हुए वहां से बाहर भागने लगे। अफरा तफरी मचने की वजह से अर्जुन भी घबरा गया। वो इधर उधर आंशी को ढूंढने लगा। ये आंशी की बच्ची जहां भी जाती है हंगामा मचा देती है, अर्जुन ने सिर पकड़कर कहा। वहां सभी लोग अपने अपनों को ढूंढने लगे और इस चक्कर में भगदड़ बढ़ गई। जल्दी से जल्दी लोग बाहर निकल रहे थे। उन सबके बीच एक सॉफ्ट टॉयज की छोटी सी दुकान के अंदर धमाका हुआ। उसके अंदर का सारा सामान एक झटके में बाहर आ गया। वहां आग लग चुकी थी पर धमाका छोटा था। इस धमाके ने वहां की भागदौड़ को और बढ़ा दिया। आंशी अभी भी बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाते हुए लोगों की बाहर निकलने में मदद कर रही थी। भीड़ से कुछ दूर दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक के हाथ में एक ब्रीफकेस था और उसने ऑरेंज कलर का हेलमेट लगा रखा था। उसके पास वाले आदमी ने ब्लैक सूट पहना था और उसने चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। परफेक्ट मस्क्यूलर बॉडी और लगभग 6 फीट के करीब हाइट। उसकी गहरी काली आंखें आंशी को गुस्से में घूर रही थीं।